السلام علیکم، یہ پارٹ ٹو ہے ناول ڈارک سیز. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنول خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹو. تم گریٹ لینڈ کی نیشنل یونیورسٹی کی طالب علم ہو اور تم پاکستان کے ماحول پر خصوصی ریسرچ کر رہی ہو. تم کرامت حسین سے ملی ہو اور کرامت حسین نے ہاشم سے رابطہ کیا ہے اور تم اس طرح ہاشم کی مہمان ہوگی اور تم نے وہاں اس لارڈ کے محل میں رہنا ہے اور وہاں کے جنگلات اور دیہاتی ماحول پر ریسرچ کرنی ہے. یہ سب انتظامات ہو چکے ہیں. ہاشم وہاں تمہارا منتظر ہے. اس فائل میں پوری تفصیل موجود ہے. باس نے ایک فائل اٹھا کر میگی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ویری گڈ باس، آپ واقعی گریٹ باس ہیں، میگی نے کہا. تو باس دیکھتے مسکرا دیا. یہ فائل تم نے ساتھ نہیں لے جانی، البتہ اسے اچھی طرح پڑھ لینا ہے. تمہارے کاغذات بھی تیار ہیں اور یہ کاغذات چیک ہونے پر بھی درست ثابت ہوں گے. باس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر میگی کو دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، اب وہاں باقی کام میں آسانی سے کر لوں گی. میگی نے کہا، اب ایک بات اور سن لو، پاکستان سیکرٹ سروس کا بظاہر اس سارے سروے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان سیکرٹ سروس دارالحکومت میں ہوتی ہے جبکہ جوہر آباد وہاں سے 800 کلومیٹر دور ہے، اس لیے وہاں تمہارا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. لیکن تمہیں بہرحال پہلے دارالحکومت جانا ہوگا اور وہاں سے جوہر آباد جانے کے لیے نہ تمہیں کوئی ٹرین ملے گی اور نہ کوئی فلائٹ. تمہیں وہاں جانے کے لیے ٹیکسی یا بس میں سفر کرنا ہوگا. بہتر یہی ہے کہ تم وہاں ٹیکسی کے ذریعے جاؤ. لیکن مجھے ہاشم کی طرف سے ایک رپورٹ ملی ہے جس نے مجھے چونکا دیا ہے. ایک بار تو میں نے سوچا کہ فی الحال یہ مشن ملتوی کر دیا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم حالات خود ہی سنبھال لوگی، باس نے کہا. کون سی رپورٹ باس؟ میگن نے چونک کر پوچھا. ہاشم نے رپورٹ دی ہے کہ دارالحکومت سے ایک آدمی جس کا نام علی عمران ہے، لارڈ صاحب کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کسی بھی روز وہاں پہنچنے والا ہے، اور ہاشم نے ہی بتایا ہے کہ وہ دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں بطور اسسٹنٹ مینیجر کام کرتا رہا ہے. اس لیے اس معلوم ہے کہ یہ وہی علی عمران ہے جو پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کا ٹکراؤ تم سے ہو جائے اور اس طرح پاکستان سیکرٹ سروس تمہارے بارے میں چونک جائے. لیکن اس کی آمد کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، اس لیے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گا، باس نے کہا. تو پھر کیا ہوا باس؟ میرے بارے میں وہ کیا معلوم کرے گا؟ ویسے بھی تو وہ اپنے کام کے سلسلے میں وہاں آ رہا ہے، میگی نے منہ بناتے ہوئے کہا. میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے. وہ بظاہر ایک مسخرہ اور احمق سا نوجوان ہے، لیکن دراصل انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہے، اور اگر اسے تمہارے بارے میں معمولی سا شک بھی پڑ گیا تو پھر معاملات یقیناً اس نتیجے تک نہ پہنچ سکیں گے جس نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، باس نے کہا. کیا اسے علم ہے کہ وہاں ایسی دھات پر کام ہو رہا ہے؟ میگی نے کہا. میرے خیال میں نہیں معلوم ہوگا کیونکہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے سروے تو حکومتی محکموں میں ہوتے رہتے ہیں، باس نے جواب دیا. تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باس. ویسے اگر وہ مجھ سے ٹکرا بھی گیا تو میں اسے خود ہی ڈیل کر لوں گی. میں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا اچھی طرح جانتی ہوں، میگی نے مسکراتے ہوئے کہا. ओके, मुझे तुम्हारी सलाहियतों का अच्छी तरह इल्म है, बॉस ने जवाब दिया। बॉस, इस धात के बारे में तफसीलात क्या है ताकि मैं वहाँ दुरुस्त अंदाज में काम कर सकूं? मैगी ने कहा, तफसीलात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, तुमने इस रिपोर्ट की कॉपी हासिल करनी है जो सर्वे के बाद हुकूमत के लिए तैयार की जाएगी। बॉस ने कहा, इससे ग्रेट लैंड को क्या फायदा होगा बॉस? मैगी ने कहा, पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, वहाँ का निजाम ऐसा है कि मामला को अंजाम तक पहुँचने में कई साल लग जाते हैं। अगर वहाँ ये नायाब धात काट कस का जखीरा दस्तियाब हो गया तो इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद इस जखीरे को निकालने तक वहाँ कई साल लग जाएंगे, जबकि इस दौरान हुकूमत ग्रेट लैंड आसानी से वहाँ से धात निकाल कर ग्रेट लैंड मुंतकिल कर लेगी, क्योंकि इस जंगल के करीब ही एक नहर खान निकाली जाने का मंसूबा चल रहा है और ग्रेट लैंड ने इसका ठेका हासिल कर लिया है। नहर निकालने के साथ साथ माहिरीन खामोशी से वहाँ से ये नायाब धात भी निकाल लेंगे और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी, बॉस ने कहा। तो फिर ये रिपोर्ट इस सरकारी ऑफिस से हासिल की जा सकती है जहाँ ये भिजवाई जाएगी, फील्ड में जाकर हासिल करने की जरूरत नहीं है बॉस, मैगी ने कहा। तुम इन सरकारी मामलात को नहीं समझ सकती, ये रिपोर्ट टॉप सीक्रेट है और पाकिस्तान में ऐसी रिपोर्ट्स को खुफिया रखने के लिए ऐसी कई फर्जी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है कि अगर कोई रिपोर्ट वहाँ से हासिल करने की कोशिश की जाए तो असल रिपोर्ट तक कोई ना पहुँच सके। इसलिए अगर ये रिपोर्ट सरकारी दफ्तर में पहुँच गई तो फिर वहाँ से इसका हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए ये फैसला किया गया है तुमने वहाँ काम करने वाले इंजीनियर से इस अंदाज में ताल्लुकात बढ़ाने हैं कि तुम्हें चाहे कितनी ही रकम देनी पड़े, कोई भी मुआवजा अदा करना पड़े, तुम्हें असल रिपोर्ट की कॉपी बहरहाल मिल जाए और मुझे मालूम है कि तुम ये काम आसानी से कर सकती हो, बॉस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, लेकिन ये रिपोर्ट कब मुकम्मल होगी? मैगी ने कहा। अंदाजा है कि इस रिपोर्ट की तैयारी में 2 हफ्ते लग जाएंगे, बॉस ने कहा। ओके बॉस, अब मुझे इजाजत दें, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगी, मैगी ने उठते हुए कहा। विश यू गुड लक, बॉस ने कहा। तो मैगी सलाम करके मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। तो बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए दूसरी फाइल उठाकर सामने रख ली। इमरान ने कार जौहराबाद जाने वाली साइड रोड पर मोड़ी ही थी कि इसे यकलक कार को ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि मोड़ के करीब ही एक टैक्सी कार खड़ी थी जिसके साथ एक नौजवान गैर मुल्की लड़की परेशानी के आलम में खड़ी इसे हाथ के इशारे से रोकने का कह रही थी। अधेड़ उम्र टैक्सी ड्राइवर भी इसके पीछे खामोशी खड़ा था। इमरान ने कार इस लड़की के करीब ले जाकर रोक दी। क्या आप जौहराबाद जा रहे हैं? लड़की ने करीब आकर पूछा। जी हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम दरपेश है? इमरान ने दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। मैं भी जौहराबाद जा रही हूँ, दारुल हुकूमत से ये टैक्सी मैंने वहाँ तक हायर की, लेकिन यहाँ पहुँचकर टैक्सी का इंजन सीज हो गया है, अब ये जौहराबाद तक नहीं जा सकती। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? लड़की ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं, आप सामान ले आए, वैसे मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है इंजन को, इमरान ने कहा और टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ है टैक्सी को? इमरान ने पूछा। जनाब बस किस्मत खराब है, 2 रोज पहले इंजन नया बनवाया था लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हेट अप हो गया है, अब इसे टो चेन करके ही वापस ले जाना होगा। मैंने मिस साहिबा को किराए की रकम भी छोड़ दी है, और क्या करता, जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने परेशान होते हुए कहा। कार का बोनट उठा हुआ था। इमरान इंजन पर झुक गया, क्योंकि अक्सर टैक्सी ड्राइवर इस तरह भी किराया बचाते हैं। और अभी जौहराबाद 200 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन थोड़ी देर बाद इमरान समझ गया कि ये वारदात नहीं है, बल्कि वाकई कार का इंजन गर्म हो जाने की वजह से सीज हो गया है। इस दौरान लड़की बैग उठाए कार तक पहुंच चुकी थी। कितना किराया तय किया था, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा। 2000 रुपए, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। कितना वसूल किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं जनाब, ये लड़की गैर मुल्की है, मैंने मुनासिब नहीं समझा इससे उलझना, टैक्सी ड्राइवर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर बड़ी मालियत के 10 नोट निकालकर इसने टैक्सी ड्राइवर के हाथ में दे दिए। तुमने वाकई शराफत से काम लिया है और मुल्क की इज्जत का भी ख्याल रखा है, इसलिए ये नोट रख लो। इंजन पर काफी खर्चा आएगा और तुम वाकई शरीफ आदमी हो, इमरान ने कहा। तो टैक्सी ड्राइवर की आंखों में चमक सी आ गई। मगर जनाब आप तो, टैक्सी ड्राइवर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान इसके कंधे पर थपकी देकर वापस मुड़ाया। मेरा नाम मैगी है और मेरा ताल्लुक ग्रेटलैंड से है, लड़की ने कार में बैठते ही अपना तारुफ कराते हुए कहा। इमरान ने इसका बैग अकबी सीट पर रख दिया था। इसका मतलब है कि मुझे भी तारुफ कराना पड़ेगा, इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते, मैगी ने हैरान होकर कहा। अरे नहीं, मेरा तारुफ इस कदर खौफनाक भी नहीं है, मेरा नाम अली इमरान है और मैंने आपके मुल्क की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MSc और DSc की डिग्रियां जबरन हासिल की हुई हैं, इमरान ने कहा। तो मैगी ने इस तरह चौंक कर इमरान की तरफ देखा जैसे इमरान के सर पर सींग निकल आए हों। अरे अरे क्या हुआ, ये आप इस अंदाज में मुझे क्यों देख रही हैं? अगर आपको तारुफ पसंद नहीं आया तो मैं तारुफ वापस ले लेता हूँ, इमरान ने कहा। तो मैगी बेख्तियार एक तवील सांस ली। मैं आपकी डिग्रियों की वजह से हैरान हो रही थी, साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले तो जिंदगी से बेजार नजर आते हैं, जबकि आप तो ऐसे लगता है जैसे साइंस के करीब ही ना गए हों। फिर आपकी ये खूबसूरत और जदीद स्पोर्ट्स कार और आपके चेहरे पर भरपूर ताजगी, मैगी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आपने शायद मेरे तारुफ के आखिरी अल्फाज पर गौर नहीं किया, मैंने कहा है कि ये डिग्रियां मैंने जबरन हासिल की है, इमरान ने कहा। जबरन, वो कैसे, क्या मतलब, मैगी ने एक बार फिर हैरान होते हुए कहा। वो क्या कहते हैं, गन पॉइंट पर, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो मैगी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपसे मुलाकात पर मुझे बेहद खुशी हुई है, आप इंतहाई दिलचस्प इंसान हैं, वरना मैं पहले टैक्सी के खराब होने पर बेहद परेशान हुई थी, मैगी ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आपने जौहर आबाद में कहाँ जाना है, वो तो तमाम देहाती इलाका है, इमरान ने चौंक कर कहा। वहाँ के लॉर्ड हैं अहमद खान, मैंने इनकी हवेली में जाना है, मैगी ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या आप इनकी बेटी की मेहमान हैं, इमरान ने पूछा। ओ नहीं, मैं तो पहली बार वहाँ जा रही हूँ, मैं ग्रेटलैंड की नेशनल यूनिवर्सिटी में माहौलियात पर मास्टर डिग्री कर रही हूँ और मुझे थेसिस मिला है पाकिस्तान के देहाती माहौल पर, लेकिन यहाँ मेरा तो कोई वाकिफ ना था। अलबत्ता मेरी एक दोस्त यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, इसके वालिद का नाम करामत हुसैन है, वो पाकिस्तानी नजाद हैं। इन करामत हुसैन के भाई लॉर्ड साहब के मैनेजर हैं। इनका नाम हाशिम है, चुनांचा करामत हुसैन के जरिए हाशिम साहब से बात हुई और हाशिम साहब ने मेरी मेजबानी कबूल कर ली और अब मैं इनकी मेहमान बनकर जा रही हूँ। आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई साइंसी प्रोजेक्ट है? मैगी ने कहा। साइंस से मेरा ताल्लुक बस डिग्रियों की हद तक है, मैं तो वहाँ बड़ दिखावे के लिए जा रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ दिखावे के लिए? क्या मतलब? ये बड़ दिखावा क्या होता है? मैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान इसके इस अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। यहाँ पाकिस्तान में शादी से पहले जब लड़का पहली बार लड़की और इसके वालिदैन से मिलने जाता है तो इसे बड़ दिखावा कहते हैं, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ओहो, तो आप वहाँ शादी करने जा रहे हैं, वेरी गुड, मुबारक हो, मैगी ने खुलूस भरे लहजे में कहा। अरे अरे, मैं अभी मुबारकबाद का कोई स्कोप नहीं है, अभी तो सिर्फ बड़ दिखावा है, इसके बाद बेशुमार मराहल आते हैं, फिर मुबारकबाद का वक्त आता है, ये भी हो सकता है कि मैं बड़ दिखावे में फेल हो जाऊं, इमरान ने कहा। क्या कोई लॉर्ड है वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं? मैगी ने कहा। हाँ, लॉर्ड अहमद खान, जिनके मैनेजर आपके मेजबान हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैगी बेख्तियार उछल पड़ी। वेरी गुड, फिर तो मैं मैनेजर हाशिम से कहूंगी कि वो लॉर्ड साहब से आपकी सिफारिश कर दें, मैगी ने कहा। तो इमरान एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ा। यहाँ पाकिस्तान में लड़की के वालिद का कोई रोल नहीं होता, इसे सिर्फ शो पीस के तौर पर सामने बिठाया जाता है। असल फैसला लॉर्ड साहब की बेगम ने अपनी बेटी के साथ मिलकर करना है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो ये बात है, आप बेफिक्र रहें, मैं इनकी बेगम और इनकी बेटी से सिफारिश कर दूंगी आपकी, मैगी ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में सिफारिश कर दी तो, इमरान ने कहा। तो मैगी बेख्तियार उछल पड़ी। मेरे बारे में? लेकिन मुझे तो प्रपोज किया जा चुका है, मैगी ने कहा। चलिए, हमारे साथ जो होगा सो होगा, आप तो मुबारकबाद कबूल करें, इमरान ने कहा। ओ, बेहद शुक्रिया, मैं ये डिग्री लेने के बाद जॉब करूंगी और फिर शादी करूंगी, मैगी ने कहा। आपको यहाँ कितने दिन लगेंगे? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं कह सकती, एक हफ्ता भी लग सकता है और 10-12 दिन भी, बहरहाल ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लग जाएंगे। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैगी ने कहा। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से वापस दारुल हुकूमत जाएं तो आप मेरे फ्लैट पर जरूर आएं, मैं वहाँ अकेला अपने बावर्ची के साथ रहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, इस दावत का शुक्रिया, मैं आपके फ्लैट पर जरूर आऊंगी, मैगी ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। आप ये बात लॉर्ड साहब के यहाँ किसी से नहीं करेंगी, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो मैगी बेख्तियार चौंक पड़ी। क्यों, मैगी ने चौंक कर हैर भरे लहजे में कहा। इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान में किसी अकेले मर्द के यहाँ किसी औरत का जाना और रहना अच्छा नहीं समझा जाता, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैगी ने फौरन ही रजामंद होते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो औरत की फितरत को अच्छी तरह समझता था कि इसे जिस बात से खुसूसी तौर पर मना किया जाए वो लाजमन वो बात बताती है, इसलिए इसे मालूम था कि अब मैगी नवाब अहमद खान के यहाँ जाते ही किसी न किसी से ये बात जरूर कर देगी और जाहिर है नवाब अहमद खान और इनका घराना रख रखाव का मालिक है तो वो समझ जाएंगे कि इमरान का किरदार अच्छा नहीं है, इस तरह वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर देंगे, इस तरह सुरैया की बेइज्जती भी ना होगी और इसका काम भी बन जाएगा। और अगर उन्होंने ये बात सुरैया को बता दी तो सुरैया खुद अच्छी तरह जानती है कि इसका किरदार कैसा है और इमरान भी आसानी से कह सकता है कि इसने तो सिर्फ इखलाकन दावत दी थी, इसलिए इमरान के चेहरे पर अब इत्मीनान के साथ साथ उभर आए थे, वरना अब से पहले वो मुसलसल यही सोच रहा था कि किस तरह इस बड़ दिखावे में फेल होकर बात सुरैया की बेइज्जती पर मामूल ना हो, वरना अम्मा भी वाकई इसका सर तोड़ देने में भी देर ना करेंगी। अब मैगी ने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। मैगी नवाब अहमद खान की हवेली के अलीहदा हिस्से में बने हुए मेहमान खाने के कमरे में मौजूद थी। इमरान के साथ यहाँ पहुँचने के बाद मैनेजर हाशिम ने इसे सबसे पहले जन्नान खाने में भिजवा दिया था और मैगी नवाब साहब की बेटी महजबीन से मिलकर बेहद खुश हुई थी, क्योंकि महजबीन ग्रेटलैंड में पढ़ती रही थी। नवाब साहब से भी इसका तारुफ कराया गया और नवाब साहब की बेगम से भी, लेकिन जब नवाब साहब की बेगम इसे पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो बेहद सख्त गैर तबीयत और इंतहाई सख्त गैर चेहरे की मालिक थी और उन्होंने मैगी को इस अंदाज में ट्रीट किया था जैसे मैगी कोई बहुत बड़ी मुजरिम हो। मैगी ने महजबीन से इमरान के बारे में खुद खूब दिल खोलकर बातें की थी। इसने इसे ये भी बता दिया था कि इमरान ने इसे वापसी पर अपने फ्लैट में आने और रहने की दावत भी दी है। गो इमरान ने इसे खुसूसी तौर पर ये बात बताने से मना किया था, लेकिन बातों बातों में वो ये बात भी कर गई थी। वैसे भी इसके नजदीक ये कोई मायूब बात ना थी, बल्कि इमरान ने तो इसे इस तरह दावत देकर इसकी इज्जत अफजाई की थी। फिर रात का खाना इन्होंने इकट्ठे खाया। इमरान दोपहर को ही वापस चला गया था और रात का खाना खाकर मैगी इसके कमरे में आई थी और अब बैठी सोच रही थी कि जब बॉस को मालूम होगा कि इसकी मुलाकात इमरान से हो चुकी है तो बॉस हैरान रह जाएंगे। गो बॉस ने इमरान के बारे में जो कुछ बताया था, मैगी को इमरान से मिलने के बाद इस पर यकीन ना आया था, क्योंकि इसे इमरान किसी भी अंदाज में खतरनाक आदमी महसूस ना हुआ था। वो तो एक खलंदर, खुशबाश और दिलचस्प इंसान था, और अगर इमरान वैसा था जैसे कि बॉस ने बताया था, तब भी इमरान को इस पर किसी सूरत भी शक ना पड़ सकता था। वो बैठी यही बातें सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ी। यस कम इन, मैगी ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और अधेड़ उम्र मैनेजर हाशिम अंदर दाखिल हुए। मैंने आपके बॉस को तफसीली रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने पैगाम दिया है कि इमरान से मुलाकात के बाद अब आपने पहले से ज्यादा मोहतात रहना है। वैसे जब मैंने आपको इमरान के साथ आते देखा तो मैं बेहद घबरा गया था, लेकिन इमरान की गुफ्तगू में जब मैंने आपके बारे में कोई शको शोभा महसूस ना किया तो मेरी जान में जान आई, हाशिम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप ख्वा मख्वा परेशान हो गए हैं, अब मेरे चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई हूँ, मैगी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे आपकी वजह से इमरान साहब का रिश्ता ठुकरा दिया गया है, हाशिम ने कहा तो मैगी बेख्याल उछल पड़ी। मेरी वजह से? क्यों, क्या मतलब, मैगी ने हैरान होकर कहा। आपने मिस साहिबा को बताया था कि इमरान ने आपको अपने फ्लैट में रहने की दावत दी है जहां वो अकेले रहते हैं। ये बात बेगम साहिबा और नवाब साहब तक पहुँच गयी और वो समझ गए कि इमरान का किरदार अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, हाशिम ने कहा। ओह वेरी बैड, मेरे तो ये तसव्वुर में भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इमरान ने खुसूसी तौर पर मना किया था कि मैं ये बात यहाँ किसी को ना बताऊं, लेकिन बस बातों बातों में बात निकल गई मेरे मुंह से। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, मुझे अब जाकर इमरान साहब से माफी मांगना पड़ेगी, मैगी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अब आपका ये प्रोग्राम है, मुझे बताएं ताकि मैं इसके मुताबिक तमाम इंतजाम कर लूं, हाशिम ने कहा। मैं कल जंगल में जाकर वहाँ लोगों से मिलना चाहती हूँ और खास तौर पर इस आदमी से जिसने रिपोर्ट तैयार करनी है। मैगी ने संजीदा लहजे में कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा। नवाब साहब की वजह से वहाँ आपको VIP ट्रीट किया जाएगा। वैसे मैंने अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की है इसके मुताबिक वहाँ काम करने वालों में से एक साहब कामरान रिपोर्ट तैयार करने का माहिर है। वो नौजवान आदमी है और बाज़ाहिर इंतहाई संजीदा और कम गो आदमी है। हाशिम ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैगी अपना काम करना जानती है। पत्थर भी मैगी के सामने मोम बन जाते हैं। मैगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हाशिम बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, आप कल 10 बजे तैयार रहें, मैं आपको ले चलूंगा, हाशिम ने उठते हुए कहा और मैगी ने इस बात में सर हिला दिया। हाशिम वापस चला गया तो मैगी ने लिबास बदला और कुछ देर बाद वो कमरे में मौजूद TV ऑन करके देखती रही और फिर TV ऑफ करके वो सो गई। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था। इसे जोहराबाद गए हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जोहराबाद से वापसी पर वो पहले कोठी गया था और उसने अम्मा बी को वहाँ जाने और वहाँ होने वाली सारी बातचीत से आगाह कर दिया था और इसने अम्मा बी को ये भी बता दिया था कि किस तरह रास्ते में मैगी से मिली और इसने इसे नवाब साहब की हवेली पहुँचाया, क्योंकि इसे मालूम था कि ये बात सुरैया को मालूम हो जाएगी और अगर इसने अम्मा बी को ये बात ना बताई तो अम्मा बी का गुस्सा उरूज पर पहुंच जाएगा और फिर नतीजा एन इसकी मर्जी के मुताबिक बरामद हुआ, क्योंकि सुरैया ने इसे फोन करके बताया कि इसने मैगी को फ्लैट में मुलाकात की जो दावत दी थी वो मैगी ने नवाब साहब की बेटी और बेगम को बता दी और नवाब साहब की बेगम ने इसका बुरा मुंह बनाया और रिश्ते से इनकार कर दिया। सुरैया ने इससे गिला किया कि क्यों इसने एक अहमक लड़की को ऐसी दावत दी तो इमरान ने इसे बताया कि ये तो इसने अखलाकन इसे कहा था, इसमें कोई ऐसी बात तो शामिल ना थी जिससे कोई गलत मतलब निकाला जा सके और सुरैया ने भी इसकी ताइद की थी, इसलिए इमरान इस रिश्ते से बाल बाल बच गया था। और चूंकि बात खत्म हो गई थी इसलिए इमरान के जहन से मैगी भी उतर गई थी। सुलेमान हसबे आदत शॉपिंग के लिए गया हुआ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्शन बदहान खुद बल्कि बद जबान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर अपने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, फौरन मेरे ऑफिस पहुँचो। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई संजीदा आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। नादिर शाही हुकुम इसे ही कहते हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन चूंकि सर सुल्तान के लहजे में बेपना संजीदगी थी इसलिए इसने फौरन ही जाने का इरादा कर लिया। इसने किताब बंद करके एक साइड पे रखी और फिर उठकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। लिबास तब्दील करके वो वापस आया। इसने फ्लैट का खुसूसी हिफाजती निजाम ऑन किया और फिर फ्लैट से बाहर आकर इसने दरवाजा लॉक किया और फिर चाबी मखसूस जगह पर रखी और सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज रफ्तारी से सेंटर सेक्रेटरी की तरफ बड़ी चली जा रही थी। कार को मखसूस पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर खड़े चपरासी ने इसे सलाम किया तो इमरान ने सर हिलाकर इसके सलाम का जवाब दिया और फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सर सुल्तान मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे रिसीवर उठाए किसी से बातों में मसरूफ थे। इमरान खामोशी से जाकर मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। सर सुल्तान ने बात खत्म की और रिसीवर कैडल पर रखकर वो इमरान की तरफ मुतवज्जा हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जनाब सुल्तान नादिर शाह साहब, इमरान ने बड़े खुशू खुजू से सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, ये नादिर शाह मेरा नाम कैसे बन गया? सर सुल्तान ने मेज की दराज खोलकर इसमें से एक फाइल निकालते हुए कहा। जिस अंदाज में आपने हुक्म दिया है, ऐसे हुक्म को नादिर शाही हुक्म कहा जाता है और आप बहरहाल सुल्तान भी हैं, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेचैन हंस पड़े। तुम्हें बुलाने के लिए अब आखिरी तरीके का यही रह गया है, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये नॉवेल डार्क फेस का बकिया हिस्सा पार्ट 3 में समाप्त फरमाएं।